नमस्कार भारत, 6 जून दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के बाद स्विट्जरलैंड पहुंचे।
जो करोड़ों ब्लैक मनी के अकाउंट्स हैं स्विट्जरलैंड में, और ब्लैक मनी का जो बड़ा ही हिस्सा है उसके बारे में मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इस पे भी शक है। और जो मोदी जी के गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि हम इस ब्लैक मनी को वापस लेके आएंगे, वो तो इनका बड़ा प्रॉमिस था।
फ्रेंच ओपन में एंडी मरे को हराकर लाल बजरी के बादशाह बने नोवाक जोकोविच।
लेडीज एंड जेंटलमैन, ही हैज वन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल, नोवाक जोकोविच।
ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज पूरे हो रहे हैं 32 साल। चलिए अमृतसर जानते हैं ताजा हाल, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के तीसरे पड़ाव में आज स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं और स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा काले धन के मुद्दे, टैक्स संबंधी जानकारी साझा करने और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता को लेकर स्विट्जरलैंड के समर्थन के लिए बातचीत कर सकते हैं। कल दोहा में भारत और कतर के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री कतर की राजधानी दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी कर चुके हैं। बेल्जियम में एक मालवाहक ट्रेन के साथ एक यात्री ट्रेन की टक्कर हो गई है। हेरमेल सुहू शहर में हुए इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। शहर के मेयर ने कहा है कि इस हादसे में 40 लोग घायल भी हुए हैं। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रेनों के 2 डिब्बे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। रेल नेटवर्क के प्रवक्ता ने कहा कि यात्री ट्रेन मालवाहक गाड़ी के पीछे से टकरा गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने माना है कि शुक्रवार से शुरू हो रहे यूरो 2016 फुटबॉल टूर्नामेंट पर चरमपंथी हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रांस इससे डरेगा नहीं। फ्रांस में रेडियो पर प्रसारित हुए उनके एक भाषण में उन्होंने कहा कि 10 शहरों में होने वाले मैचों के लिए 90,000 सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे। फ्रांसवा ओला ने ये कहा,
हम
काफ़ी सतर्क हैं, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता के दौरान सावधानी की ज़रूरत है। हम सभी ज़रूरी कदम उठाएंगे। खतरा है जो कि पहले से मौजूद था, लेकिन हम सावधान हैं और यूरो 2016 को सफल बनाएंगे। ये थे फ्रांसवा ओला के शब्द। पिछले साल पेरिस में चरमपंथी हमले के बाद फ्रांस में पहले से ही आपातकाल लागू है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका में एक सैनिक कैंप में विस्फोटक भंडार में आग लगने से कई धमाके हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी कोलंबो के नज़दीक स्थित इस इलाके में लोगों को अपने घरों से भागते हुए देखा गया है। पुलिस ने धमाके इतने बड़े थे कि बलबा मुख्य सड़क और आसपास के इलाकों तक फैल गया। कानून और व्यवस्था मंत्री सागरा रत्नायक ने बताया है कि आग से असला भंडारों में आग पहुंच गई थी, उससे कई धमाके हुए हैं और लोग सड़कों पर पहुंच गए हैं। धमाकों में कम से कम 1 सैनिक की मौत होने की खबर है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि 3 लोग इस घटना में घायल भी हुए हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में एक वरिष्ठ अमरीकी पत्रकार और उनके अफगान अनुवादक की हत्या कर दी गई है। ये दोनों अफगान सेना की गाड़ी में मौजूद थे जब तालिबान के रॉकेट हमले से उनकी मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल पहले भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में किस वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं? मेरा अनुमान ये है कि इसकी वजह है उनकी विदेश यात्राएं, और शायद आप भी इस बात से असहमत नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फिर विदेश यात्रा पर हैं और इस बार अफगानिस्तान के रास्ते कतर होते हुए कुछ घंटे पहले स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं। स्विट्जरलैंड का जिक्र आते ही बात होती है वहां जमा काले धन की, जिसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत वापस लाने की बात बार बार दोहराते रहे हैं। तो क्या मोदी के स्विट्जरलैंड जाने से वहां जमा भारत का काला धन वापस आ सकता है? इस सवाल पर लौटेंगे कुछ देर के बाद। पहले सुनते हैं मोदी की कतर यात्रा पर अशोक कुमार की ये रिपोर्ट।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा रवाना होने से पहले कतर की राजधानी दोहा में भारतीय समुदाय से मुखातिब हुए तो माहौल जाना पहचाना था। मोदी ने कतर में रहने वाले भारतीयों की दिल खोलकर तारीफ की तो अपनी सरकार के दो साल के कामकाज की भी जानकारी दी। मोदी ने बताया कि दुनिया भर में जारी आर्थिक गिरावट और देश में लगातार दो साल सूखे के बावजूद भी उनकी सरकार 7.9% की वृद्धि दर हासिल करने में कामयाब रही है। इस मौके पर मोदी ने कतर के साथ भारत के संबंधों का भी जिक्र किया और उसे भारत का करीबी सहयोगी बताया।
भारत और कतर के संबंध बहुत ही घनिष्ठ संबंधों के रूप में एक दूसरे को घनिष्ठ मदद करने वाले, उपयोगी होने वाले संबंध रहे हैं और यहां के सभी प्रमुख महानुभावों के साथ विस्तार से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला।
दो दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से बातचीत की। मोदी ने उद्योग जगत के लोगों से भी बात की और कहा कि भारत संभावनाओं का देश है और वो उन्हें अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। मोदी की मौजूदगी में भारत और कतर के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल और निवेश समेत 7 समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत के विदेश विभाग में आर्थिक संबंधों के सचिव अमर सिन्हा ने मीडिया को बताया,
बोथ साइड्स फेल्ट दैट टाइम हैज कम दैट वी नीड टू मूव बियॉन्ड ट्रेडिंग रिलेशनशिप, गेट इनटू स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट्स।
दोनों देशों को लगता है कि अब समय आ गया है कि व्यापारिक संबंधों से आगे जाकर रणनीतिक निवेश की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे बीच कई क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई। हमारे परिप्रेक्ष्य से प्रधानमंत्री ने जिन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात की उनमें रेलवे, सौर ऊर्जा, रक्षा विनिर्माण और सामान्य निर्माण के क्षेत्र शामिल थे। इन सब के अलावा भारत में मौजूद अनेक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मिसाल के तौर पर रेलवे के क्षेत्र में हम मसाला बॉन्ड लेकर आने वाले हैं।
ये थे अमर सिन्हा के शब्द। शनिवार को कतर पहुंचने के बाद भारतीय श्रमिकों से मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने दोहा से रवाना होने से पहले अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी।
यहाँ से मैं अभी निकलूंगा, स्विट्जरलैंड जाना है, उसके बाद यूएस, उसके बाद मेक्सिको। कुल 6 दिन का कार्यक्रम है, 5 देश हैं, 45 से ज्यादा मीटिंगें हैं।
5 देशों के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा पड़ाव स्विट्जरलैंड है, जहां से वो अमेरिका के लिए रवाना होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के कतर और आगे के दौरे पर अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार की रिपोर्ट। और बात एक बार फिर स्विट्जरलैंड की, और सवाल वही, मोदी क्या हासिल करने वाले हैं स्विट्जरलैंड की यात्रा से?
वो ट्रिप के बाद ट्रिप लगा रहे हैं और हमेशा जब वो ट्रिप लगाते हैं तब ये कहा जाता है, अरे इंडिया नया डेस्टिनेशन है, FDI फ्लोज बहुत आने वाले हैं। उनका वैसे कोई जो स्पीच है इन लोगों की तरफ वो ज्यादा बदला नहीं है, लेकिन इस 18 महीने में क्या हमारा बिजनेस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो वाकई बदल गया है या नहीं? और काफी यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं बदला है। और ये भी वो लोग देख रहे हैं कि वो मॉरिशस के साथ जो हमने ट्रीटी, जो 1983 की इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी, जिसकी वजह से यहाँ के काफी सारे लोग इन्वेस्ट करते थे मॉरिशस रूट की तरफ से, क्योंकि उनको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब सवाल उठ रहा है कि या क्या इंडिया इसके खिलाफ कदम उठाएगा या असली बदल आएंगे। मतलब कोई मूवमेंट तो है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो सफल होने वाला है या नहीं, इसलिए लोग यहाँ पे रुक के देख रहे हैं कि फाइनल डेवलपमेंट इस बात में क्या होने वाली है।
मोदी के इस दौरे से भारत को क्या कुछ हासिल हो सकता है?
देखिए, एक बड़ा जो मामला है वो है ब्लैक मनी का, जो करोड़ों ब्लैक मनी के अकाउंट्स हैं स्विट्जरलैंड में, और जो मोदी जी के गवर्नमेंट ने बार बार कहा है कि हम इस ब्लैक मनी को वापस लेके आएंगे, वो तो इनका बड़ा इलेक्ट्रल प्रॉमिस था, लेकिन उस पे उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है। और अब ये सवाल होता है, ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए, क्या स्विट्जरलैंड इस बात की तरफ रिसेप्टिव होगा या नहीं। कई बार स्विस इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि हम तो तैयार है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आप ही हमें सवाल नहीं पूछ रहे हैं।
तो आपको लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी ये सवाल रखेंगे, और वो क्या मुद्दे उठा सकते हैं जब उनकी बातचीत होगी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के साथ?
देखिए, स्विट्जरलैंड जो है वो एक तो न्यूट्रल देश है, वो किसी भी ब्लॉक में नहीं आता है। दो तीन जो चीजें हैं, एक ये होगा जो एनएसजी के मेंबरशिप का है, ठीक है स्विट्जरलैंड का छोटा मोटा आवाज है उसमें, लेकिन कोई बड़ा वो वेट लिफ्टिंग वाले लोग नहीं है स्विट्जरलैंड उसमें। दूसरी बात ये है कि ब्लैक मनी का जो बड़ा ही हिस्सा है उसके बारे में मोदी जी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस पे भी शक है, और किस तरह अगर बोले भी तो किस तरह से बोलेंगे।
ये थी पेरिस से वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावणे, उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और देखना दिलचस्प होगा काले धन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी स्विट्जरलैंड में क्या कहते हैं और स्विट्जरलैंड उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं से खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं। अब इसे संयोग ही कहा जाएगा कि पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान ने अपने साप्ताहिक स्तंभ के लिए मोदी की विदेश यात्रा को ही विषय चुना है। आइए सुनते हैं तफसील से।
एक बात समझ में नहीं आती, ये मोदी जी घर में क्यों नहीं टिकते? अब तो यूं लगे हैं जैसे एक देश से दूसरे देश जाते जाते दिल्ली में भी उतर जाते हैं। चलिए, आप एक स्वायत्त देश के स्वायत्त प्रधानमंत्री हैं, जहां चाहें जाएं, पर ये तो कोई बात ना हुई कि आप बहाने बहाने से उन देशों में भी बार बार चक्कर लगा रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कुछ ना कुछ टांका भिड़ा रहता है। जैसे फरवरी में आपने काबुल यात्रा की, चलिए ठीक है, वहाँ आपको अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग के तोहफे का फीता काटना था। अब आप फिर अफगानिस्तान पहुँच गए हिरात में सलमा डैम का इफ्तिताह करने, कलकलां आप किसी सड़क की नींव का पत्थर रखने के बहाने पहुँच जाएंगे। अभी डेढ़ हफ्ते पहले ही तो आपकी तेहरान में राष्ट्रपति अशरफ गनी से भेंट हुई थी, क्या दिल नहीं भरा? हमारा तो उनसे बहुत पहले ही भर गया था। मोदी जी, कभी कभी तो मुझे आप पाकिस्तान के संदर्भ में वो हीरोइन लगते हैं जो विलन को जलाने के लिए बात बेबात किसी भी फटीचर लौंडे के साथ कभी आइसक्रीम खा रही है तो कभी पानी पूरी सुड़क रही है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद विलन को देख के हंस भी लेती है। अच्छा ये बताएं, क्या हमारे प्रधानमंत्री का दिल नहीं चाहता कि वो काबुल यात्रा करें और वहाँ किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करें? क्या जनरल शरीफ का दिल नहीं चाहता होगा कि वो भी ढाके जाके शहीद मीनार पे फूल चढ़ाएं? एक जमाना था कि शाह बरिंद्रा या तो काठमांडू में होते थे या फिर इस्लामाबाद आ जाते थे। कोलंबो वाले भी इतने फेरे नहीं लगाते थे जितने इस्लामाबाद वाले वहाँ के लगाते थे। और रजा शाह पहलवी, वो तो कभी शिकार के बहाने तो कभी बिना बहाने ही बस गुजरते हुए सोचा चक्कर लगा लूं कहते कहते कहीं भी उतर जाते थे, जैसे आप लाहौर में उतरे थे। पर वो हमारे अच्छे दिन थे, ये आपके अच्छे दिन हैं, भले जनता पे आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। हमें इससे भी कोई आपत्ति नहीं कि आप अमरीकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब करें। आपसे पहले हमारे प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, सदर अयूब खान और श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो भी यही तमगा पा चुकी हैं। बस एक मशवरा है और बड़े तजर्बे का है, कहीं कैपिटल हिल पे कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के सामने जबान से ये ना फिसल जाए कि भाइयों मैं कांग्रेस का सफाया करने आया हूँ।
ये थे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान अपने अलग ही अंदाज में।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 32वीं बरसी है। 32 साल पहले आज ही के दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने दमदमी टकसाल के प्रमुख और पंजाब में पृथकतावादी आंदोलन चला रहे जनरल सिंह भिंडरावाला को उनके सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ ख़त्म कर दिया था। जनरल सिंह भिंडरावाला को सिखों का एक समूह आज भी अपने शहीद नेता के तौर पर देखता है, और हर साल आज के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर पंजाब में, ख़ासतौर पर अमृतसर में, हवा में कुछ तनाव सा महसूस होता है और सुरक्षा के इंतज़ाम भी आम दिनों की तुलना में कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं। आज अमृतसर में क्या माहौल है जानने के लिए बस कुछ देर पहले मैंने अमृतसर में स्थानीय पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन से बात की।
ये 32वीं बरसी है जिसको मनाने के लिए जो सिखों के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अकाल तख्त साहिब जो सिखों की हाईएस्ट टेम्पोरल सीट है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो प्रेयर करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में लोग मारे गए इंडियन आर्मी के जो अटैक के बाद, उन लोगों के लिए, और उन लोगों को वो ऑनर करते हैं जिसमें जनरल सिंह खालसा भिंडरांवाला या उनके साथी जो मारे गए थे उनके परिवार वालों को। इस बार जो देखें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में ज्यादा इस पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, एक तनावपूर्ण स्थिति बनी गई है। उसका कारण एकदम से नहीं है कि 32 इयर्स के एनिवर्सरी आई है, पिछले एक साल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे यहाँ पे तनाव बढ़ा है। वो घटनाओं में कथित तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेहद भी जो पिछले कुछ दिनों में हुई, और एक दो संत समाज के बंदों के बीच में गोलीबारी चली, जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका यहाँ पे आना और यहाँ पे उनका इकट्ठा होना, उससे उसके मद्देनजर सरकार को लगा कि यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, तो उन्होंने लगभग 8,000 के करीब पुलिस पर्सनल पूरे अमृतसर में लगाए, एक छावनी में तब्दील कर दिया है अमृतसर को। इसके अलावा लुधियाना में, पटियाला में, वहाँ पे भी CRPF की पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगाई गई हैं। एक दल खालसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आज एक बंद की कॉल भी दी है ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखते हुए।
क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जैसे मौके जो है वो राज्य के अलगाववादियों को दोबारा उभरने का मौका देते हैं?
इसकी इसमें कोई दौर आए नहीं है कि पंजाब लगभग 20 साल के करीब काले दिनों में रहा है, और उसके बाद सरकार की लगातार कोशिश और लोग भी, उन लोगों ने भी सरकार का साथ दिया और पंजाब एक दोबारा से पंजाब में पीस जो है वो रिस्टोर होने की पोजीशन में रहा है। लेकिन ये ना केवल ऑपरेशन ब्लू स्टार से के साथ रिलेटेड जितने भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं या रिलीजियस इश्यूज हैं जो एक संवेदनशील इश्यूज बन गए हैं, उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि हाँ, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे इवेंट्स जिसमें एनिवर्सरी हालांकि जो मनाते हैं लोग वो एक मौका दे रहा है हार्ड लाइनर्स को वो अपनी, क्योंकि पिछले 4 साल की बात करें तो इसमें यहाँ पे प्रो खालिस्तान के नारे लगते रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर, और हालांकि जो अकाल तख्त के जथेदार हैं जो हाईएस्ट कहते हैं और पंजाब के CM प्रकाश सिंह बादल, इन सभी लोगों ने अपील की है कि अगर ऑपरेशन ब्लू स्टार या कुछ इस तरह की इवेंट मनानी है तो इसको पीसफुल ढंग से मनाया जाए। लेकिन अब अभी का हालात यह है कि सिमरन सिंह मान जो शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रधान है और जिनको एक अलगाववादी के रूप में उनकी पहचान है, वो अपने कुछ लोगों के साथ अंदर आ गए हैं और पिछले 3-4 साल से वो हर बार जब भी आते हैं तो वो खालिस्तान के नारे लगाते हैं, ये एक्सपेक्टेड होता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार उनके लिए एक तरह की इम्पोर्टेंस रखता है जिसमें वो अपनी बात इस ढंग से कन्वे करते हैं ताकि पंजाब के लोग जो है वो या अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए पंजाब में इस तरह का करते हैं।
ऑपरेशन ब्लू स्टार को आज पूरे हुए 32 साल, अमृतसर से ये थे हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में हिंसा के बाद तहस नहस हुए जवाहर बाग में कल जब मीडिया को जाने की इजाजत मिली तो अंदर की एक अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आई जो सरकार और स्थानीय प्रशासन की एक तरह से पोल खोल देती है। सुनिए वात्सल राय से।
मथुरा प्रशासन ने हिंसा के 3 दिन बाद मीडिया को जवाहर बाग के अंदर जाने की इजाजत दी। जवाहर बाग पर बीते 2.5 साल से काबिज रामवृक्ष यादव और उनके साथियों ने अंदर अस्थायी नगर बसा लिया था, जहां एक बड़ा पंडाल था, कई झोपड़ियां थीं, दर्जनों गाड़ियां थीं, बिजली के लिए सोलर पैनल लगा हुआ था और करीब 2 महीने का राशन था। झोपड़ियां हिंसा के दौरान राख में तब्दील हो गई थीं, वहीं गाड़ियों का भी बस ढांचा ही बचा है। फिलहाल सुरक्षा के लिए बाग के अंदर PAC के कैंप लगे हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के मुताबिक कल ही अलीगढ़ के कमिश्नर चंद्रकांत ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कमिश्नर चंद्रकांत ने BBC को बताया कि वो अगले 15 से 20 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे।
अभी तो प्रिलिमिनरी शुरुआत मैंने की है, जो भी विज्ञप्ति के बाद लोग आए उनसे जानकारी ली है और जो जगह थी उसका इंस्पेक्शन कर लिया कि जगह पे क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात कर ली और कई पार्टियों के लोग आए, उन्होंने अपनी बातें बताई। मेरे पहले 15-20 दिन में ज्यादा से ज्यादा हो जानी चाहिए।
जवाहर बाग में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों और 2 विधायकों का एक दल कल जवाहर बाग के दौरे पर पहुंचा, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने इसे सबूत छुपाने की कोशिश बताया।
पूरी जिम्मेदारी आरोप लगा रहा हूँ, प्रमाण है इस चीज के, और राम वृक्ष यादव तो पुराने लिंक है इनके, और जिलाधिकारियों ने विभिन्न अधिकारियों ने बराबर प्रशासन को पत्र लिखे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसमें इनके हस्तक्षेप के कारण से कार्रवाई हो नहीं पाती थी। हम जवाहर बाग जाना चाहते थे, हमको जाने नहीं दिया गया, कहा गया कि सुरक्षा के कारण से हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उससे हमारा ये मत बना है कि वो तथ्यों को कुछ मिटा रहे हैं, सबूतों को मिटा रहे हैं।
पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दुखद घटना पर भी राजनीति कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं,
भारतीय जनता पार्टी का आरोप को हम गंभीरता से नहीं लेते, वो उनकी वो आदत है, एक दुखद घटना हो गई है, उस पर भी राजनीति करना होगा।
जाहिर है मथुरा के जवाहर बाग में लगी आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन इसे लेकर जो राजनीति शुरू हुई है उसके थमने के आसार फिलहाल नहीं दिखते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
नमस्कार, भारत में एक नई सुबह और चाय की प्याली के साथ नए अखबार चाय की चुस्की आप लेते रहें, और हम आपको बताते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, आज के अखबारों की सबसे पहली खबर बताती हूँ, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी है ये। जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने दावा किया है कि भारत सरकार ने कंधार विमान अपहरण कांड के बाद तत्कालीन तालिबान सरकार से उसे और उसके दो साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पैसों की पेशकश की थी। उसने दावा किया कि 1999 में कंधार में जो इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-184 विमान का अपहरण किया गया था, उसके बाद यात्रियों और उसके क्रू मेंबर को छोड़ने के लिए मौलाना मसूद अजहर और उसे छोड़ा गया था भारत सरकार की तरफ से। तो उसने कहा है कि तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तालिबान के उड्डयन मंत्री मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर के सामने ये पेशकश की थी। हालांकि भारत में खुफिया एजेंसी के रॉ के तत्कालीन प्रमुख AS दुल्लत ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि इस पूरे वाक्य में कहीं भी पैसों की कोई बात नहीं आई थी, तो भारत की तरफ से इनकार किया गया है। इसके अलावा एक और खबर है, 2007 के समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में पाकिस्तान के गवाहों को बयान देने के लिए भारत बुलाया जाएगा। द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने निवेदन किया है, हरियाणा की अदालत 13 लोगों के लिए समन जारी करेगी, और अखबार ने ये खबर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से छापी है। मथुरा का जो मामला आजकल अखबारों में छाया हुआ है, 2-3 दिन से मथुरा के जवाहर बाग में हिंसा हुई है, उस पर आज अखबारों में मैं देख रही हूँ, जनसत्ता ने खबर लिखी है कि केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विकास मंत्री शिवपाल सिंह यादव पर आरोप लगाया है और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे उन्हीं का हाथ था, संरक्षण दिया उन्होंने, जबकि शिवपाल सिंह यादव ने इससे इनकार किया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि स्वाधीन भारत सुभाष सेना के अंदरूनी राज जवाहर बाग में कल आधी जली हुई एक किताब में दर्ज मिले हैं, और कहा गया है कि 10-12 पन्नों में लिखा गया कि गुजरात और उड़ीसा जैसे कई जगहों से इनको पैसा मिलता था और वकील दिल्ली वाले के नाम पर काफ़ी पैसा खर्च होता था, जो मामले इन पर दर्ज किए गए हैं।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए, और अब हर सोमवार की तरह बारी है साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी की।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत टेनिस से।
लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे ही हैज वन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल, नोवाक जोकोविच।
रोला गैरा की लाल बजरी पर कल रविवार को लाल टी शर्ट पहनकर पुरुष एकल वर्ग का फाइनल खेलते हुए सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार ये खिताब तो जीता ही, साथ ही अपना करियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा किया। शीर्ष वरीयता के साथ खेलने वाले जोकोविच ने पहला सेट 3-6 से हारने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी इस कामयाबी को लेकर भारत के डेविस कप कोच जीशान अली ने कहा,
आठवें टेनिस प्लेयर हैं ओपन एरर में जिन्होंने अपना पूरा करियर ग्रैंड स्लैम जीता है। कोई ठीक नहीं अगर उनका फॉर्म ऐसे ही रहा तो ओलंपिक्स भी जो इस साल है विंबलडन है वो गोल्डन स्लैम क्वाइट पॉसिबल की जोकोविच ये अचीव कर सके इस साल।
भारत के लिए भी फ्रेंच ओपन यादगार रहा जब मिश्रित युगलवर का खिताब लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने अपने नाम किया। और अब बात बैडमिंटन की। इंडोनेशिया ओपन में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल कल दूसरी वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई ने अपने नाम किया। खिताबी जीत के मुकाबले में उन्होंने पांचवी वरीयता हासिल डेनमार्क के यानो योर्गेंसन को 1:05 तक चले संघर्ष के बाद 17-21, 21-19, 21-17 से हराया। महिला एकल वर्ग का खिताब चीन ताइपे की ताई जू युंग ने जीता। गैर वरीयता हासिल यिंग ने चौथी वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान को 34 मिनट में ही 21-17, 21-8 से मात दी। और अब बात दुनिया के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली की, जिनका निधन बीते शनिवार को एरिजोना के फिनिक्स के एक अस्पताल में 74 साल की उम्र में हो गया। ऐसा खेलों की दुनिया में कम ही देखा गया है जब कोई खिलाड़ी अपने खेल जीवन के दौरान ही खुद के महान होने का दावा डंके की चोट पर करे और उनके दावे को कोई चुनौती ना मिले। लेकिन मोहम्मद अली ने तो ऐसा कहकर ही नहीं करके भी दिखाया।
All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. When I beat Sonny Liston, I told you today I'm still the greatest of all time. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
तितली की तरह उड़ना और मधुमक्खी की तरह डंक भरना, शायद यही उनका मूल मंत्र भी बन गया था। अपने पूरे मुक्केबाजी जीवन में मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले मुक्केबाजी रिंग में लड़े, 56 जीते और 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 बार मोहम्मद अली विश्व हैवी वेट चैंपियन बने। 1960 के रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन उनके यादगार मुकाबलों में शामिल था साल 1974 में 30 अक्टूबर को जॉर्ज फॉरमैन के खिलाफ हुआ मुकाबला। तब मोहम्मद अली की उम्र 32 साल थी और फॉरमैन उगते सूरज की तरह 25 साल के थे। तब तक फॉरमैन लगातार 40 मुकाबले 37 नॉकआउट के रिकॉर्ड के साथ जीत चुके थे, जबकि मोहम्मद अली 2 हार के साथ 44 मुकाबले अपने नाम कर चुके थे। $5 मिलियन के इस मुकाबले की कमेंट्री कर रहे थे जिम ब्राउन, जॉय फ्रेजियर, डेविड फ्रास और बॉब शेरिडॉन। मोहम्मद अली पहले रिंग में पहुंचे जबकि फॉरमैन ने उन्हें 3 मिनट से अधिक इंतजार कराया।
$5 million on the hoof, we'll call it for tonight.
Or maybe George Foreman is just not coming.
Or maybe that's a thought that I didn't think of.
शुरुआती राउंड से ही फॉरमैन को पता चल गया कि अली किस फौलाद के बने हैं। आखिरकार 8वें राउंड में बेहद थके होने के बावजूद ठीक अंतिम 12 सेकंड पहले मोहम्मद अली ने फॉरमैन पर लगातार पंचों की बौछार कर उन्हें रिंग में गिरा दिया और उसके बाद की कहानी इतिहास है। अब मोहम्मद अली इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, लेकिन इसे जितना पढ़ा जाए और जितना सुना जाए कम है। उनके द्वारा कहे गए शब्द इम्पॉसिबल इज नथिंग हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही
और इसके साथ ही घड़ी में भारत में बजने वाले हैं 7 और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। लेकिन कार्यक्रम के समापन से पहले एक बार फिर प्रमुख समाचार हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के तीसरे पड़ाव में स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्विट्जरलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा काले धन के मुद्दे, टैक्स संबंधी जानकारी साझा करने और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में सदस्यता को लेकर चर्चा संभव है। गुजरात में वर्ष 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी दंगों के मामले में विशेष एसआईटी अदालत दोषियों को आज सजा सुना सकती है। बेल्जियम में एक मालवाहक ट्रेन के साथ एक यात्री ट्रेन की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने माना है कि शुक्रवार से हो रहे यूरो 2016 फुटबॉल टूर्नामेंट पर चरमपंथी हमले का खतरा मंडरा रहा है। श्रीलंका में एक सैनिक कैंप में विस्फोटक भंडार में आग लगने से कई धमाके हुए हैं। इसमें एक सैनिक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक 1 घंटे के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।